आत्मज्ञानदिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे क्षीरं यथा ददि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो स्वागत है आप सबका इस ब्रह्म संहिता के प्रवचन श्रृंखला में। तो पिछले प्रवचन में हमने चर्चा की कि भगवान शिव भगवान की नरवत्र लीला में किस प्रकार से भगवान की अलग अलग पद्धति से सहायता करते हैं और खास करके आसुरों को वरदान देके उनको भगवत लीला में एक मनोरंजकता उत्पन्न कर देते हैं। तो हमें समझना है कि भगवान शिव जो कि भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है और यहां तो ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं और पद्म पुराण में भी वर्णन किया जाता है, वहां पे कहा है कि परात परम यान्ति नारायण परायणः नते तत्र गमिष्यन्ते ये द्विषन्ति महेश्वरम। यहां पे कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान शिव को अलग समझता है और उसको अपराधी कहा गया है। यहां पे एक्चुअली जो भगवान शिव को भगवान नारायण से जो अलग समझता है, वे कहते हैं आगे योमाम समत अर्चयेत्य नित्यम एकांत भावमाश्रितः विनिन्दन्ति देवमीशानं स याति नरकायुतम्। इस श्लोक में बताते कि कोई व्यक्ति नारायण परायण व्यक्तिगण की गति वैकुंठ में होती है, यह कथन सत्य है, किंतु महेश्वर द्वेषी होने पर उनकी विष्णु धाम की प्राप्ति नहीं होती और शिव निंदा पूर्वक सतत एकांत भाव से मेरी पूजा करने से भी अयुत संख्यक नरक में प्रस्थान करना पड़ता है। यानी जो व्यक्ति अपने आप को नारायण का भक्त समझता है और भगवान शिव के प्रति मत्सर करता है या उनके प्रति द्वेष करता है या उनके प्रति अपराध करता है तो कहा जाता है कि वो विष्णु धाम तो जाएगा ही नहीं बल्कि उसमें नरक जाना पड़ेगा, नरक की गति प्राप्त होगी। और आगे कहा गया है कि मद भक्ता शंकर द्वेषी मद द्वेषी शंकर प्रियः उभौतौ नरकम यातौ यावत् चंद्र दिवाकरौ। मद भक्त शिव द्वेषी होने से किंवा शिवभक्त मद्वेषी होने से चंद्र सूर्य स्थिति यावत अर्थात प्रलय काल पर्यंत उन सबको नरक में दुख भुगतना पड़ेगा। स्वयं भगवान हयशीर्ष पंचरात्र में कहते हैं कि यह शिवा सो अहम एव यो अहम स भगवान शिवः नावयोर अंतरम किंचित आकाश अनिलयोर इव। कि जिस प्रकार से आकाश और अनिल यानी अवकाश में वायु का जिस प्रकार से स्थान है वे दो एक दूसरे से जैसे अभिन्न है तो उसी प्रकार से यहाँ पे स्वयं हयशीर्ष भगवान हयग्रीव बता रहे हैं कि मैं ही शिव हूँ और शिव ही मैं हूँ। मैं ही शिव हूँ और शिव ही मैं हूँ। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णोर विष्णोर तु हृदयं शिवः यथा शिवमयो विष्णुरेव विष्णुमय शिवः यथांतरम न पश्यामि तथा ते स्वस्तिरायुषः। तो इन श्लोकों में कहा गया है कि गुणावतार रूप में एकत्व हेतु शिव वैष्णवागण्य है अतएव सदाचारवत। जो शिव है सो ही मैं हूं और जो मैं हूं वो सो ही शिव है। आकाश और वायु के भेद समान कार्य कारण के अभेद के तुल्य इन दोनों को भी अभेद समझना चाहिए। ब्रह्मवर्च परिशिष्ट में लिखित है कि विष्णु ही शिव रूपी और शिव ही विष्णु रूपी है। विष्णु ही शिव का हृदय और शिव ही विष्णु का हृदय है। विष्णु जिस प्रकार शिवमय है तद्रूप शिव ही विष्णुमय है। उभय में प्रभेद दिखाई नहीं देता। ऐसे ही मदीय परमायु की सत्ता हो यानी जो इस प्रकार से समझ लेता है कि शिव को विष्णुमय और विष्णु को शिवमय वो व्यक्ति परमायु को प्राप्त कर लेता है ऐसे कहा गया। और ये मैं पढ़ रहा हूं हरिभक्ति विलास के चतुर्दश विलास में से श्लोक संख्या 180 से लेके 194 तक ये पूरा वर्णन किया गया है और खास करके शिवरात्रि व्रत निर्णय के बारे में बताया गया। पद्म पुराण के व्रत खंड में ये सारा वर्णन आता है। तो भगवान स्वयं ही बता रहे कि वे और शिवजी का क्या संबंध है। और फिर हम देखते हैं कि खास करके गौड़ीय संप्रदाय में शिवजी को बहुत ही महत्व दिया जाता है। कई पाखंडी लोग हैं जो गौड़ीय संप्रदाय के ऊपर कीचड़ उछाड़ते हैं कीचड़ फेंकते हैं और वे कहते हैं कि ये शिवद्वेषी है शिवजी को भगवान नहीं मानते हैं। कोई अर्ध पकाओ कोई व्यक्ति उनको मिला होगा और उससे श्रवण करके उन्होंने अपना मत बना लिया होगा इस गौड़ीय संप्रदाय और इस्कॉन के बारे में कि ये लोग शिवद्वेषी है पाखंडी है भगवान उन्हें क्षमा करे उनके इस अपराध के लिए। लेकिन शास्त्र के वचन ये है और उन वचनों के अनुसार गौड़ीय संप्रदाय में भी जो गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख है श्रीमान चैतन्य महाप्रभु उन्होंने शिव जी की स्तुति की है और वे कहते हैं यहाँ पे मुरारी गुप्ता जी की एक डायरी है उसमें शिवाष्टक दिया गया है और उस शिवाष्टक में भगवान शिव की स्तुति स्वयं चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं जो कि हमारे आराध्य देव है। अगर वे भगवान शिव को मान रहे तो हमें क्या आपत्ति है भगवान शिव को मान के उनकी पूजा करना या उनकी स्तुति करना उनका गुणगान करना। लेकिन कई पाखंडी लोग हैं जो किसी भी तरह से वैष्णव के ऊपर कीचड़ उछड़ने में उनको आनंद आता है ऐसे लोग कहते हैं कि ये तथाकथित इस्कॉन के जो अनुयायी है या गौड़ीय अनुयायी है या भगवान शिव के प्रति अपराधी है। लेकिन यहाँ तो जैसे हरिभक्ति विलास जो कि सनातन गोस्वामी पाद और गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने पूरा लिखा हुआ है वे कहते हैं हरिभक्ति विलास में कि श्री कृष्णे वैष्णवान्तु प्रेम भक्ति विवर्धते कृष्ण भक्ति रससार वर्षी रुद्र अनुकंपया। अगर उनके पास थोड़ी मति है तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि हरि भक्ति विलास के चतुर्दश विलास में 221वां यह श्लोक है, जो कि सनातन गोस्वामी पाद जो हमारे षड गोस्वामियों से एक है और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी षड गोस्वामियों से है जिनके हम अनुयायी है, उन्होंने लिखित स्वरूप में दिया है यहाँ पे कि श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के जो भजन करने वाले हैं उन वैष्णवों के लिए अगर भगवान की भक्ति विवर्धित करने वाले कोई है, भगवान की भक्ति की वृद्धि करने वाले अगर कोई है और कृष्ण भक्ति रस सार का वर्षा जो करने वाले है वो कौन है? रुद्रानुकंपा, भगवान शिव की अनुकंपा से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है वो प्राप्त होती है। तो जो भक्ति प्रदान करने वाले उनके प्रति हम अपराध करेंगे? कम से कम ये मूर्खों को समझना चाहिए कि हम वे क्या बोल रहे हैं और किसके बारे में बोल रहे हैं। और यहां पे शास्त्र का वचन है और उन वचनों का पालन करते हैं। हाँ, कई अर्धबकाऊ वैष्णव अपने आप को मानने वाला उनको कोई मिला होगा और जिसने भगवान शिव के प्रति अपराध किया होगा तो उसने किया करके सारे पूरे गौड़ीय संप्रदाय को आप पाखंडी नहीं कह सकते हैं। अरे हमारे पास प्रमाण है यहां पे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमार तो महान, भगवान का प्रेम प्रदान करने वाला सबसे प्रामाणिक ग्रंथ कोई है तो श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत में स्वयं शिवजी बताते हैं कि उनके प्रिय कौन है और उनसे किन लोगों को प्रेम करना है और किस प्रकार से शिवजी को प्राप्त करना है और शिवजी को क्या प्रिय है, ये स्वयं शिवजी बताते हैं। चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय में जहां पे रुद्र गीत बताया गया है, उस रुद्र गीत की शुरुआत में शिवजी के बारे में पहले वर्णन किया गया है। वे बताते हैं कि शिवजी कैसे दिखते हैं। तप्त हेम निकायाभम शीतकंठम त्रिलोचनम प्रसाद सुमुखम विक्षे प्रणीतम अर्जुन कौतुकः, कि भगवान शिव का वर्ण कैसा है? तप्त हेम निकायाभम, उनका वर्ण पिघले हुए सुवर्ण के जैसा है और उनका कंठ शीतकंठम, उनका कंठ जो है वो नील वर्ण का है, और त्रिलोचनम जिनकी तीन आंखें हैं और अति प्रसन्नता से वे भगवत चिंतन कर रहे हैं। और उन शिवजी को जब प्रचेतास मिलते हैं तो भगवान शिव अति प्रसन्न हो जाते हैं और वे कहते हैं कि यह परम ब्रह्मसाह साक्षात त्रिगुणात संजीव सन्नितात भगवंतम वासुदेवाः प्रपन्नाः स प्रियो हि मे। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो भगवान वासुदेव को प्रपन्न है यानी शरणागत है, भगवान वासुदेव का जो भक्त है स प्रियो हि मे, वही मुझे प्रिय है। ऐसे भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं यहां पे। फिर आगे वे बताते हैं कि स्वधर्म निष्ठा शतजन्म भी पुमान विरान चिता मेति तथ परम हिमान अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम पदम यताहम विभुदो कलात्यते, कि स्वधर्म निष्ठा 100 जन्म तक शत जन्म तक स्वधर्म निष्ठा ने जो कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का अवलंबन कर लेता है वो विरंचिता मेति वो ब्रह्मा जी बन सकता है, और उसके आगे भी जाकर जो और प्रगति कर लेता है वो शिवजी तक पहुंच सकता है। लेकिन शिवजी यहां पे स्वयं कहते हैं कि अव्याकृतम भागवतो अथ वैष्णवम पदम यताह विभूता कलय कल्पते, लेकिन जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण या विष्णु की शरण ग्रहण कर लेता है और उनकी अनन्य भक्ति प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति देवताओं को भी अप्राप्य जो भगवत धाम है उसको प्राप्त कर लेता है। तो स्वयं शिवजी यहां पे भगवत भक्ति का महिमा गुणगान कर रहे हैं। तो वे भक्त नहीं है? अगर उनको हमने भक्त कहा तो कौन सा अपराध किया? वे स्वयं कहते हैं अत भागवतायुआं प्रिया स्य भगवान यतः नमत भगवतानां च प्रियान अनन्यो अस्ति करहचित। वे कहते हैं यहाँ पे कि आप लोग सब भगवान के भक्त हो और भगवत स्वरूप ही हो मेरे लिए, और मैं जानता हूं कि इसी प्रकार से भागवत जो है, वैष्णव जो है, वो मुझसे प्रेम करते हैं और मैं उसी प्रकार से उनसे प्रेम करता हूं। तो भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण या विष्णु के जो भक्त हैं उनके बीच में ये संबंध है। भगवान की भक्ति प्रदाता शिव जी है, इसलिए यहां पे कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रससार वर्षी रुद्र अनुकंपया। भगवान रुद्र के अनुकंपा से ही, उनकी दया से ही वैष्णवों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसे भक्ति प्रदान करने वाले के प्रति कौन अपराध करे। और इस रुद्र गीत्र में चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय में स्वयं शिवजी भी कहते कि ये जो मैंने स्तुति अर्पण की है भगवान को, इसको जो भी कोई व्यक्ति हर रोज प्रातः में गाएगा, उस व्यक्ति को भगवत भक्ति निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो भगवान की स्तुति करने वाला भगवान का भक्त होता है या असुर होता है? तो शिवजी को अगर हमने भक्त कहा और ये भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कहा, तो ये उनके प्रति अपराध है? कदापि नहीं। और महाप्रभु के ऊपर भी कीचड़ फेंकने वाले कई स्मार्ट ब्राह्मण हैं, जो कहते कि महाप्रभु वैष्णव थे ही नहीं, वे एक कट्टर स्मार्ट थे, पता नहीं कहां से ये सारे उन्होंने संदर्भ लिए और उसके ऊपर एक एक दो दो घंटा उन्होंने प्रवचन किया उन व्यक्तियों ने। और यहां पे महाप्रभु स्वयं कहते हैं, वे शिवजी का गुणगान करते समय कहते हैं, श्री राम गोविंद मुकुंद शौरे श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा इत्यादि नामां व्रत पान मत्ता भृंगादिपायाखिल दुख हंत्रे। वे यहां पे शिवजी को कहते हैं कि आप भृंगादि पाया अखिल दुख हंत्रे, कि आप सारे जीवों के दुखों को नष्ट करने वाले, दुख हंत्रे। क्यों क्यों उसके पीछे कारण है, कहां से उनको ये सारे जीवों के दुख को हरण करने की शक्ति आती है? क्योंकि वे यहां पे कहते हैं कि श्री राम गोविंद मुकुंद शौरे श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा इत्यादि नामा मृतपान मत्ता। जैसे कोई व्यक्ति मदिरा पी के मत्त हो जाता है, तो वो पूरी ऐसा प्रतीत करता है कि वो पूरी दुनिया का राजा है और जो चाहे वो करने का प्रयास करता है। तो सोचिए कि जिस व्यक्ति ने भगवत नाम को, नाम रस का पान किया है, वो कितना मत्त होगा, और उसके लिए इस भौतिक जगत में क्या असंभव है। अरे जो नामों के गुणगान करता है, नाम के रस में पूरी तरह से रसपान से मत्त हुआ है, जो भगवान को भी अपने वश में कर लेता है उनके भक्ति के द्वारा, ऐसे व्यक्ति के लिए इस भौतिक जगत में क्या संभव है। तो शिवजी का वर्णन करते हुए श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि श्री राम गोविंद मुकुंद शौरे श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा इत्यादि नामाम रसपान मत्तः, इत्यादि नाम के रस में जो मत्त है, वे शिवजी क्या करते हैं, प्रायः अखिल दुख हंत्रे, सबके दुख का निवारण कर देते, हंत्रे यानी नष्ट कर देते। फिर आगे कहते हैं कि शिवजी क्या करते क्या रहते हैं, श्री नारदाद्या सततम सुगोप्या जिज्ञासिता याशु वर प्रदाय तेभ्यो हरेर भक्ति सुख प्रदाय शिवाय सर्व गुरवे नमो नमः। अरे हम तो शिवजी को सर्व गुरु मानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि कृष्णम वंदे जगत गुरु, और शिवजी को तो सर्व गुरु कहा गया है यहां पर। और कह कौन रहे, श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं इस कलयुग में श्री श्री राधा कृष्ण के अवतार है, और वे स्वयं यहां पे कहते हैं शिव जी को कि शिवाय सर्व गुरवे नमः, जो सबके गुरु है उन शिव जी को हम प्रणाम करते हैं करके। क्यों? क्योंकि वे श्री नारद आदि सततम सुगोप्य, भगवत लीलाओं का जो गोप्य वार्तालाप है, कथाएं है, वे नित्य रूप से श्री नारद आदि ऋषियों के साथ चर्चा करते रहते हैं, और जिज्ञासु जो है उनके ऊपर दया करके वे हरेर भक्ति सुख प्रदाय, वे हरि भक्ति का सुख प्रदान करते हैं। तो ऐसे दयालु जो है उनके प्रति कोई अपराध करेगा, क्या हम उस व्यक्ति को फिर वैष्णव कहेंगे? कतिपय संभव नहीं है। और श्रीमद महाप्रभु आगे जाके कहते हैं कि श्री गौरी नेत्रोत्स्वर मंगलाय तत्प्राणनाथाय रसप्रदाय सदा समुत्कंठ गोविंद लीला गान प्रवीणाय नमोस्तुभ्यम, कि मैं उन शिवजी को प्रणाम करता हूं जो सदा समुत्कंठ, जो समुत्कंठ से गोविंद लीला का गान करने में प्रवीण कहा गया है, कुशल है, ऐसे शिवजी को मैं प्रणाम करता हूं। गौरांग महाप्रभु यहां पे बोलते हैं और आगे कहते हैं कि एतत् शिवस्य अष्टकम् अद्भुतम् महत्, ये शिव अष्टकम् बहुत ही अद्भुत है और महान है। श्रुण्वन् हरि प्रेम लभेत शीघ्रम्, जो कोई व्यक्ति इस अष्टक को, शिव अष्टक को सुनेगा तो क्या होगा उसको? हरि भक्ति या हरि प्रेम प्राप्त होगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा करके महाप्रभु बता रहे। ज्ञानम च विज्ञान अपूर्व वैभवम यो भाव पूर्ण परमम समादरम, कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो जो व्यक्ति आदर के साथ पूर्ण रूप से इन श्लोकों का गान करेगा उस व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त होगा। ऐसे कौन बता रहे? स्वयं चैतन्य महाप्रभु बता रहे। तो ऐसे जो शिवजी है क्या उनके प्रति हम अपराध करेंगे? संभव ही नहीं, क्योंकि कई कम बुद्धिमान लोग हैं जो इन तत्वों को जान नहीं पाते, क्योंकि शिव तत्व यह विषय इतना गहरा और विस्तृत है कि उनकी लीलाओं, उनके रूपों और उनके महिमाओं का वर्णन करने वाले प्रत्येक प्रसंग को हम इस चर्चा में नहीं ला सकते, क्योंकि हमारा प्रमुख उद्देश्य है कि शिवजी के विषय में ज्ञान प्रदान कर लोगों को उत्साहित करना, जिससे कि उनके हृदय में अपनी चेतना विकसित करने की इच्छा जागृत हो और शिवजी का प्रत्येक कार्य और आचरण हमें बहुमूल्य शिक्षा प्रदान करता है, वह हमें समझना चाहिए कि निम्नगानाम यथा गंगा देवतानाम अच्युतम यथा देवर्षिनाम यथा नारदो वैष्णवानाम तथा शंभु, भगवान शिव वैष्णव में इतने श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम वैष्णव उनको कहा गया। कई लोगों को उसके लिए भी आपत्ति है, तो शिव भगवान नहीं है क्या? केवल वैष्णवी है क्या? क्यों वे भगवान? हमने तो कहा नहीं कि वे भगवान नहीं है, लेकिन भगवत अंश होने का वे स्वयं भगवान की भगवत्ता को स्वीकार लेते हैं और कहते कि मैं उनके नाम का जाप करने वाला हूं, उनका भक्त हूं, उनका सेवक हूं, तो उनकी वो वाणी है, तो वो हम छोड़ के आप जैसे मूर्खों को सुने? और शिवजी स्वयं शिक्षा प्रदान करे, जब स्वयं शंकराचार्य बन के आते हैं तो आज जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ अष्टकम गाया जाता है वो किसने लिखा है? स्वयं शंकराचार्य, श्रीपाद शंकराचार्य जो कि शिवजी है, उन्होंने ही लिखा है ना। और क्या कहते हैं वे उसमें? वरम पुंडरी काय दातुम मुनिन्द्रे समागत्यानंदति, वो सॉरी वो तो पांडुरंग अष्टकम में से है, पांडुरंग अष्टकम भी शंकराचार्य जी ने लिखा, विवेक स्वयं कहते पर ब्रह्मलिंगम तटे भीमरत्याम, कि भीम भीमा नदी के तट पे पर ब्रह्मलिंग वो स्वयं पांडुरंग जी खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं, पर ब्रह्मलिंग परम ब्रह्म का विग्रह खड़ा है। वे स्वयं बताया कि नारायण और बड़ा अभिव्यक्त था, स्वयं शिवजी बता रहे हैं ना, हम तो नहीं बता रहे। और शिवजी से कई चीजें हम सीख सकते हैं क्योंकि वे हमें कई सारी शिक्षाएं प्रदान करते हैं क्योंकि वे हमारे गुरु हैं। वे स्मशान में वास करते हैं और अपने शरीर के ऊपर चीता का भस्म धारण करते हैं और हमें शिक्षा देते हैं कि यह भौतिक शरीर नष्ट होने वाला है और अंत में राख में ही मिलने वाला है। तो पूरे जीवन भर सुख विलास और भोग प्राप्त करने के लिए इस शरीर का उपयोग नहीं करना है बल्कि इसको भगवत भक्ति के लिए करना है। ये शिवजी हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। कई तामसिक व्यक्ति सोचते हैं कि शिवरात्रि के समय भांग या गांजा पिया जाए क्योंकि शिवजी पीते हैं। अरे शिवजी ने हलाहल भी पिया था, क्या आप पियोगे? उन्होंने किया करके ये अर्ध कुकुट न्याय जैसा हो गया कि मुर्गी अंडा देती है इसलिए पीछे का उसका भाग रखो और आगे से दाना खाती है इसलिए उसको काट दो। तो हमें जो अनुकूल है उसको स्वीकारो और प्रति जो हमारे इंद्रिय तृप्ति के प्रतिकूल है उसका त्याग करो। यही वृत्ति हो गई ना लोगों की, जिसको अर्ध कुकोटी न्याय कहा जाता है। अरे शिवजी अगर बाह्य रूप से देख लगता है कि वो भांग पी रहे हैं या गांजा खा रहे हैं तो उन्होंने हलाहल भी पिया है ना, वो भी कर लो थोड़ा सा। अरे शिवजी इतने दयालु है कि ऐसे तमोगुणी व्यक्तियों को भी अपने प्रति आकर्षित कर लेते हैं ताकि धीरे 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 वो शुद्ध होकर भगवत प्राप्ति कर ले। वे ऐसे ही तुरंत किसी के ऊपर प्रसन्न होकर उसको वरदान नहीं देते क्योंकि हर समय गोविंद लीला का अनुस्मरण करते हुए ध्यान करते हुए वे रहते हैं अष्टकाली लीलाओं का, तो उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना हो। और ये उनके जो तथाकथित तामसिक जो भक्त रहते जो उनकी उनको प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर देते हैं वे बाधा लाते हैं शिवजी की साधना में, इसलिए शिवजी बोलते चल ले पकड़ और भाग यहां से। जैसे हम देखते हैं कि कभी माता कुछ काम में व्यस्त हो और बच्चा आ जाता है कुछ मांगना शुरू करता माँ फट से दे के बोलते जा कर ले ताकि वो अपना काम ठीक तरह से करे। तो वैसे ही शिवजी अपनी साधना में व्यत्यय ना आए इसलिए लोगों को तुरंत देके छोड़ देते हैं। और भगवान शिव नित्य रूप से भगवत लीला का चिंतन ही करते रहते हैं और इसीलिए हमारे गौड़ीय संप्रदाय में शिवजी की स्तुति बहुत सुंदर रूप से की जाती है। जैसे व्रजविलास नाम का एक ग्रंथ है जिसमें शिवजी की स्तुति करते समय कहा गया है कि वे कैसे हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी अपने ब्रजविलास स्तव में कहते हैं, मुदा गोपिंद्र सतातात्मज भुज परिष्ट रंग निदये स्फुरद गोपी वृंदर यमिहं भगवतं प्रणय भी भजत भीस्ते भक्त्या स्वमभिलाषितं प्राप्तमच्छिराद यमी तीरे गोपीश्वर अनुदिनं तम किल भजे। ब्रजविलास स्तव में ये 87 नंबर का श्लोक है। यमुना के तट पर स्थित गोपीश्वर महादेव की मैं प्रतिदिन स्तुति करता हूँ। इन्हीं गोपीश्वर को प्रसन्न कर गोपियों ने शीघ्रातिशीघ्र अपना मनोवांछित फल अर्थात नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण के आलिंगन रूपी अमूल्य रत्नों को पाया था। तो आप जान सकते हैं यथा व्रज वनिता नाम कहा जाता है कि भक्ति कैसे करनी है, तो व्रज की जो गोपियां हैं उनके जैसी करनी चाहिए। और वे गोपियां वो भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए शिवजी से प्रार्थना करती है। तो ऐसे शिवजी को हम वैष्णव में श्रेष्ठ माने तो क्या यह हमारी गलत धारणा है, या शिवजी उससे प्रसन्न नहीं होंगे? केवल शास्त्र को एक ही दृष्टि से नहीं देखना है हमें। जैसे इस प्रवचन श्रृंखला में यानी शिव तत्व के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पहले भाग में हमने देखा कि वेदव्यास जी ने किस प्रकार से व्यक्ति की चेतना के स्तर के अनुसार या उसकी चेतना के विकास के अनुसार शास्त्रों के तीन भाग किए गए। कुछ शास्त्र या कुछ पुराण जो तीन गुणों में उन्होंने दे दिए हैं, कुछ तमोगुण में है, कुछ रजोगुण में है, कुछ सतोगुण में है, और उस गुणों के जो अधिष्ठाता देवता है उनके अनुरूप उनके जो उपासक है उनके लिए उन्होंने वो अधिष्ठाता देवता सर्वोत्तम उसमें बताया गया है, ताकि उनके प्रति वो व्यक्ति पूरी तरह से समर्पित हो, और पूरी तरह से शरणागत होने के पश्चात उस व्यक्ति को उस गुण से ऊपर वाले गुण में अपने आप ही पदोन्नति हो जाती है, और फिर अंत में विशुद्ध सत्व में आकर वो भगवत भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो इसे हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतिर्विभिन्ना नासाव ऋषिर यस्य मतम न भिन्न धर्मस्य तत्त्वम् निहतो गुहा यम महाजनो इन गथा सबंधा। तो धर्म को समझना है, शास्त्र को समझना है, इन शिव तत्व को समझना है, तो हमें महाजनों के चरणों का अनुगमन करना चाहिए। और हमने देखा यहां पे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु हमें बता रहे हैं, जीव गोस्वामी पाद बता रहे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद बता रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी जी बता रहे हैं, और हयशीर्ष पंचरात्र में स्वयं भगवान श्री हरि बता रहे हैं। अगर इनको हम नहीं सुनेंगे और अपने कुतर्कता से अपनी कल्पना से कुछ धारणाएं बनाए रखेंगे तो उससे क्या हल प्राप्त होने वाला है? केवल वैष्णव और शिव निंदा करके पतन ही होने वाला है। और कहा गया है कि आज अंधरात तक हमें नरक में पड़ना पड़ेगा। तो ये सारे पीछे न पड़कर शास्त्रों को यथारूप समझकर हमें भगवान शिव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति प्राप्त करनी है। तो इसलिए शिव तत्व को समझना बहुत ही आवश्यक है। आपकी कुछ भी टीका टिप्पणी आलोचना या कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट में लिखिए, उसके अनुसार अगर आपके प्रश्न है, आपकी जिज्ञासा है, तो उसका निवारण करने का हम प्रयास करेंगे पूर्वाचार्यों के मतानुसार, शास्त्रों के आधार अनुसार। और कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा हम बताते समय, या कुछ संदेह हो तो उसके बारे में भी आप पूछिए, क्योंकि भगवत भक्ति और हमारे सारे जो शास्त्र है ये कोई मिथ्या नहीं है। जैसे आजकल के शिक्षण पद्धति में और तथाकथित विद्वान लोग बोलते हैं कि भारतीय शास्त्र जो है वो सब माइथोलॉजी है, फिक्शंस है, वैसा नहीं है। ये एक शास्त्र है जिसमें निबंध दिए गए हैं, उसको आप अपने जीवन में अपना सकते, उसके ऊपर प्रयोग कर सकते हो और फिर निष्कर्ष तक भी पहुंच सकते हो। तो उसको उचित रूप से हमें स्वीकारना चाहिए, और वही एक हमारा ये प्रयास है। जैसे श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि मंदिर ये केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये कोई व्यवसाय नहीं है, बल्कि मंदिर एक ऐसी संस्था है जहां पे आपको आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत किया जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान आपको सिखाया जाएगा। वो एक शिक्षा संस्थान है जहां पे जाके हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। लेकिन आजकल लोगों का नजरिया ही बदल गया, खास करके वैदिक मंदिरों को वो केवल एक पैसा कमाने का जरिया समझते हैं या तो फिर ठगबाजी का समझते हैं। नहीं है वैसा। अगर आप में प्रामाणिकता हो और प्रामाणिक रूप से अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति है तो हम बैठे हैं यहां पर पूर्वाचार्यों के मतानुसार और भगवत प्रणीत शास्त्रों के द्वारा आपके हर संदेह को निवारण करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप उसके लिए प्रयास तो करें। जानने का। तो भगवान शिव के बारे में जो हमने पिछले 3 श्रृंखला में चर्चा की, अगर उसमें आपको कोई भी संदेह हो, किसी कोई बात समझ में ना आई हो, आप जरूर कमेंट में लिख के बताइए, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आज हम यहाँ पे अपने वाणी को विराम देते हैं, और फिर कल से भगवान विष्णु के बारे में शिवजी ब्रह्मा जी क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में, उनके बारे में 2-3 श्लोक है आगे के, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री ब्रह्म संहिता की जय।